सिंघानिया मेंशन में इस वक्त बिल्कुल शांति छाई हुई थी, यहां तक कि घर में अंधेरा फैला हुआ था। इतने अंधेरे के बीच सिर्फ इशिका के कमरे की लाइट जल रही थी और उसमें आयशा बैठी थी। वो वहां लगे सोफे पर किसी क्वीन की तरह बैठी हुई थी। इस वक्त उसके हाथ में एक सेब था जिसे वो खा रही थी। उसकी नजरें सामने लगी इशिका और राधिका की फोटो पर थी जिसे वो नफरत से घूर रही थी। अचानक उसने वहां रखा एक वास उठाया और फोटो की तरफ दे मारा। शीशा टूटने की जोरदार आवाज आई। आयशा इस वक्त गुस्से में गहरी सांसें ले रही थी। उसने हांफती आवाज में कहा, मुझे तुम दोनों से नफरत है। तुम दोनों की वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई। क्या हो जाता अगर तुम हमेशा मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करती राधिका सिंघानिया? तुम्हें सच पता नहीं था, फिर भी तुम उसे इशिका को प्रायोरिटी देती थी। मेरी खुद की माँ भी यूजलेस निकली। अगर मुझे बदलना ही था तो इस बारे में किसी और को बताने की क्या जरूरत थी? और इशिका, तुमने मुझे कभी चैन से नहीं रहने दिया। जिस लड़के को मैं पसंद करती थी वो तुम्हारे पीछे पागल था। जिसे मैं अपनी माँ समझती थी वो मुझसे ज्यादा तुमसे प्यार करती थी। सोचा तो मैं हमेशा जिंदगी में अपनी नौकरानी की तरह रखूंगी, लेकिन तुम्हारी शादी हुई भी तो राजवंश एम्पायर के सीईओ से, जिसके हाथ में पूरी पावर थी। तुम अभिमन्यु को डिजर्व ही नहीं करती, ना तुम राधिका को अपनी माँ के तौर पर डिजर्व करती हो और ना ही कुछ और। तुम्हारी औकात मालविका की बेटी के तौर पर ही होनी चाहिए, जिसे वो मारती थी और मेरा हर छोटा काम करवाती थी। देखना, बहुत जल्द मैं तुम्हें तुम्हारे पुराने दिन लौटाने वाली हूँ। आयशा अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा नफरत इशिका से करती थी, लेकिन अब उसकी लिस्ट में राधिका भी शामिल हो गई थी। उसके दिल में इस वक्त यही था कि अगर राधिका चाहती तो उसे माफ कर सकती थी। उल्टा, राधिका कभी उससे मिलने तक नहीं आई थी। तुमने मेरा कमरा और मेरी जगह उस इशिका को दे दी राधिका सिंघानिया। क्या हो जाता अगर एक बार मुझसे मिलने के लिए आ जाती? मैंने तुम्हें अपनी माँ का दर्जा दिया था, जबकि सच अच्छे से जानती थी कि मालविका मेरी माँ है। लेकिन अब और नहीं, तुम सब मेरे प्यार के लायक नहीं हो। काफी देर तक गुस्से में राधिका और इशिका को भला बुरा कहने के बाद आयशा खड़ी हुई। उसने एक जोड़ी कपड़े निकाले और बाथरूम में चली गई। नहाने के बाद वो वापस आ गई थी। बहुत दिनों बाद उसे अच्छा महसूस हो रहा था। वो बेड पर लेटी और सीलिंग को देख रही थी। आयशा के दिमाग में वो यादें ताजा हो गई थी जब वो सबसे बचकर पागलखाने से भागी थी। सुबह के लगभग 3 बजे के करीब आयशा के कमरे में वो नर्स दाखिल हुई, जिसे उर्वशी ने आयशा का ध्यान रखने के लिए छोड़ा था। वो आयशा के लिए खाना लेकर आई थी। उर्वशी के जाने के बाद से आयशा काफी बेहतर हो गई थी, क्योंकि उसे समय पर खाना मिलने लगा था और वो नर्स उसकी देखभाल भी करती थी। खाना खाते हुए अचानक आयशा ने नर्स से पूछा, क्या उर्वशी आंटी यहाँ पर वापस आई थी? तुम्हारी उनसे बात हुई? वो मुझे यहाँ से कब निकालने वाली है? मुझे नहीं लगता कि अब वो तुम्हें यहाँ से निकालेगी। मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि कल से मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर नहीं आ पाऊंगी। पहले तो वो मेरा कॉल रिसीव करती थी और मुझे मेरे काम के लिए पैसे भी भेजती थी, लेकिन अब ना वो मेरा कॉल रिसीव कर रही है और ना ही पैसे भेज रही है। सुबह ही उनका मैसेज आया था कि एक बार मैं उनसे कॉन्टैक्ट ना करूँ। नर्स ने आयशा को पूरी बात बता दी थी। खाना खाते हुए अचानक आयशा के हाथ रुक गए थे। उसकी आज़ादी की एक आखिरी उम्मीद उर्वशी भी अब खत्म हो चुकी थी। अब तो उसके लिए अच्छा खाना भी नहीं आने वाला था। इसका मतलब साफ था कि आयशा को वही जिंदगी वापस बितानी पड़ेगी जिसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं थी। आयशा ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में नर्स से कहा, मुझे नहीं पता कि उसने तुम्हें कितने पैसे देने का वादा किया है, लेकिन मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ, यहाँ से बाहर निकलते ही मैं तुम्हें काफी कुछ दे सकती हूँ। पैसे, महंगी ज्वेलरी और बहुत कुछ। तुम बस मेरे बताई हुई जगह पर पहुंच जाना। अगर 24 घंटे में मैं तुम्हें कुछ ना दे पाऊँ तो तुम मेरा पता पुलिस को बता सकती हो। नर्स के लिए ये एक अच्छा ऑफर था। उसने कुछ पल सोचा और घबराहट के साथ कहा, तुम्हारा ऑफर काफी अच्छा है, लेकिन अगर मैं गलती से भी पकड़ी गई तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं रिस्क नहीं ले सकती। यहाँ चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। कैमरे तो तब भी लगे होते हैं जब तुम मेरे लिए खाना लेकर आती हो। तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगा। एक बार फिर सोच लो, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलने वाला। कब तक इस नर्स की नौकरी से गुजारा करती रहोगी? तुम्हारे भी कुछ सपने होंगे जो इस छोटी सी सैलरी से कभी पूरे नहीं होंगे। एक बार तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे, उसके बाद तुम अपनी पसंद की जिंदगी बिता पाओगी। आयशा अपनी बातों से उसे बहलाने लगी थी। यही तो उसका काम था, सामने वाले के दिमाग के साथ खेलकर उसे मैनिपुलेट करना। इतने सालों से वो यही तो करती आई थी। उसका ऑफर अच्छा था। नर्स सोचने लगी थी कि वो मुकर ना जाए, ये सोचकर आयशा ने उसे समझाते हुए आगे कहा, तुम जानती हो ना मैं कौन हूँ। सिंघानिया फैमिली की बेटी हूँ मैं। मैं तुम्हें कुछ कीमती सामान दूंगी, उसे बेचकर तुम थोड़े पैसे मुझे दे देना और जरूरी सामान ला देना। बाकी के पैसे तुम रख सकती हो। अगर तुम इतनी ही अमीर हो तो वो लोग तुम्हें छुड़ाने के लिए क्यों नहीं आए? मैंने तुम्हारे बारे में पता किया था। तुम उस घर की नाजायज बेटी थी। तुम्हारी माँ ने बचपन में तुम्हें बदल दिया था। उसके बाद से वो तुम्हें नफरत करते हैं, तो इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी। नर्स ने जवाब दिया तो आयशा गुस्से में उसकी तरफ घूरने लगी। अनजाने में ही सही, उसे नर्स ने आयशा के जख्मों पर नमक छिड़क दिया था। आयशा ने खुद के गुस्से को काबू करने के लिए गहरी सांस ली और फिर कहा,
मैं तुम्हारी बात से अग्री करती हूँ, लेकिन अब इस घर में कोई नहीं रहता है। मेरे डैड की डेथ हो गई और मेरी मॉम घर छोड़कर चली गई। सिक्योरिटी भी नहीं होगी। इतने सालों से मैं उनके घर की जायज बेटी बनकर रही हूँ। मुझे सारे पासवर्ड पता है। सोच लो, फैसला तुम पर है। क्या तुम्हें उम्र भर ये कुछ हजार रुपए की नर्स की नौकरी करनी है या फिर अपने सपनों को पूरा करना है? मैं तैयार हूँ, लेकिन मुझे धोखा मत देना, नर्स ने कहा। उसकी हाँ कहते ही आयशा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आयशा ने उसके हाथ पर हाथ रखा और वादा किया। आई प्रॉमिस, आयशा इतना ही बोली। ठीक है, फिर कुछ देर इंतजार करो, नर्स ने जवाब दिया और वहां से छुपते छुपाते बाहर आ गई। रात के उस वक्त के करीब हमेशा दो नर्स सभी पेशेंट को चेक करने के लिए जाती थी। जब वो नर्स चेंजिंग रूम में पहुंची तो उसकी दोस्त तैयार थी। कहाँ रह गई थी तुम सुधा, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। राउंड लगाना है फिर सोने भी तो चलेंगे, दूसरी नर्स ने कहा। मैंने राउंड लगा लिया है, और क्या जरूरत है रोज रोज इन पागल लोगों को देखने जाने की। बस रिकॉर्ड लिखना बाकी है कि सब पागल सोए हुए थे। तुम सोने चली जाओ, मैं 10-15 मिनट में आती हूँ तुम्हारे साथ, सुधा ने काफी कैजुअली कहा। दूसरी नर्स ने उसकी बात पर कोई सवाल नहीं किया। वैसे भी वो सब थक जाते थे उन पागल लोगों के पास जाकर उनका हालचाल पूछने या दवाई देने में। कई बार तो वो हॉस्पिटल स्टाफ के साथ बहुत बुरा बर्ताव करते थे, मारने पीटने तक लगते थे। तुम ठीक कह रही हो यार, आगे से भी यही करेंगे। एक दिन तुम चली जाना, एक दिन मैं चली जाऊंगी। वैसे भी मुझे बहुत नींद आ रही है, तुम जल्दी ही आ जाना, दूसरी नर्स ने जवाब दिया और उसे थैंक्स कहने के बाद सोने के लिए चली गई थी।
सुधा ने जल्दी से अलमारी से एक नर्स की ड्रेस निकाली और कैमरे की नज़र से छुपते हुए आयशा के कमरे में पहुंची। उसने नर्स को कपड़े देते हुए कहा, ये लो पकड़ो, इसे चेंज कर लो। सबको यही लगेगा कि रात की ड्यूटी के वक्त दो नर्स यहाँ पर चेक करने के लिए आई थीं। मेरे साथ वाली नर्स भी झूठी गवाही दे देगी। गलती उसकी है जो आज उसने अपना काम छोड़कर सोना सेलेक्ट किया है। नौकरी के चलते वो सच भी नहीं बोल पाएगी। थैंक यू सो मच, आयशा बोली और उसने तुरंत अपने कपड़े चेंज कर लिए थे। प्लान के मुताबिक आयशा उस नर्स के साथ वहां से सुरक्षित निकल गई थी। आयशा सीधे सिंघानिया मेंशन पहुंची। उसकी किस्मत अच्छी थी कि अब वहां कोई सिक्योरिटी नहीं थी। ऊपर से उसे सारे पासवर्ड पता थे, पासवर्ड को चेंज नहीं किया गया था। इस बात का फायदा उठाते हुए आयशा अंदर गई और उसने वहां से कुछ पैसे और महंगी ज्वेलरी निकाली। उसने सुधा को अपने लिए खाने पीने का सामान और एक मोबाइल मंगवाया था। नक्श जब शादी के बाद पहली बार राधिका से मिलने के लिए गया था, तब वो उसके लिए डायमंड नेकलेस लेकर गया था जिसकी कीमत लाखों में थी। आयशा को हमेशा से वो सेट पसंद था, लेकिन उसने वो ज्वेलरी सुधा को दे दी। चाहे तो इसे पहन सकती हो या फिर बेचोगी तो काफी सारे पैसे हो जाएंगे। अभी नर्स की नौकरी मत छोड़ना, वरना लोगों को शक हो जाएगा। दूसरी बात, मुझे अपना नंबर दे दो, कभी तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो मैं कॉल करूंगी। मुझे तुम्हारे रेगुलर नंबर के अलावा दूसरा नंबर देना ताकि तुम पकड़ी ना जाओ। आयशा ने सुधा को सब कुछ समझा दिया था, वो काफी शातिर थी। सुधा भी उसकी बातों में आ गई थी, आखिर उसे इतने महंगी ज्वेलरी और पैसे मिल रहे थे। सुधा ने कुछ घंटे बाद आयशा के पास उसका बताया हुआ सामान किसी और के हाथ भिजवा दिया था। करीब दोपहर के वक्त आयशा के गायब होने की बात पता चली। सीसीटीवी फुटेज वगैरह चेक किया तो सब कुछ नॉर्मल लगा था। ऐसे में किसी को पता नहीं चल पा रहा था कि आयशा को किसने गायब किया होगा। वहीं अपने कमरे में लेटी आयशा सब याद करते हुए बोली, इस बार मैं पूरी तैयारी के साथ आई हूँ ईशिका, और सच में ये तुम्हें बहुत महंगा पड़ने वाला है। उसके बाद आयशा आराम से सोने लगी। आखिर इतने दिनों बाद उसे सुकून की नींद नसीब हो रही थी। दूसरी तरफ अगली सुबह ईशिका की आंख खुली तो अभिमन्यु उसके पास नहीं था। उसने घड़ी में टाइम देखा तो सुबह के 9 बज रहे थे। उसे उठने में देर हो गई थी और अभिमन्यु ने भी उसकी हेल्थ के चलते उसे नहीं जगाया था। ईशिका ने सिर पकड़कर कहा, ओ नहीं, मुझे इस वक्त यहाँ नहीं, राजवंश एम्पायर में होना चाहिए। आज शेयर्स के बंटवारे को लेकर बोर्ड मेंबर्स के बीच मीटिंग है और अभिमन्यु को मेरी जरूरत है। आज अभिमन्यु को सच में एक सहारे की जरूरत थी, क्योंकि उसका साथ देने के लिए सिर्फ वसुधा और उसके दादाजी दिग्विजय राजवंश थे, जो दोनों ही मीटिंग में मौजूद नहीं थे। दूसरी तरफ बाकी की राजवंश फैमिली आज पूरी फिराक में थी कि वो अभिमन्यु को उसकी पोजीशन से हटा सके। ओके, फिलहाल के लिए इतना ही। आज थोड़ा चैप्टर देने में देर होगी क्योंकि मैं अभी लिखा है। चलिए अगले पार्ट पर मिलते हैं।